राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धनी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धनी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बन चरी। यमुना तीरा बन चरी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धनी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धनी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बन चरी। यमुना तीरा बन चरी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमदीज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविशिष्ट कौंडर आचार्य शिव दि होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गोनताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। सब लोग मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारू अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक संख्या 1 पृष्ठ संख्या 181। मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रियेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रियेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रियेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। शब्दार्थ बोलिए। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा संन्यासं संन्यास कर्मणां संपूर्ण कर्मों के कृष्ण हे कृष्ण पुनः फिर योगम भक्ति च भी संससि प्रशंसा करते हो यत जो श्रेय अधिक लाभप्रद है एतयो इन दोनों में से एकम एक तत् वह मेरे लिए ब्रूहि कहिए सुनिश्चितम निश्चित रूप से। अनुवाद सब लोग मेरे पीछे बोले। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सलकयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम त्रिशंससी। हे कृष्ण, आप कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। तो अर्जुन को लगता है कि दो बातें विरोधी हैं। भगवान दो विरोधी बातें बतला रहे हैं। पहले कर्म संन्यास का उपदेश देते हैं और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। तो अर्जुन दुविधा में है। अर्जुन कह रहे हैं यत् श्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इन दोनों में से जो एक कल्याणकारी हो वो मुझे सुनिश्चित करके बतलाइए। अच्छी प्रकार से निश्चय करके मुझे एक बात बताइए जो कल्याणकारी हो। दो बातें मत बताइए। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद के भगवद गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में ये बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। हाँ, तीसरे अध्याय में भगवान ने एक श्लोक में ये बताया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते हैं। कोई बता सकता है कौन सा श्लोक है जहाँ तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते हैं? सत्रहवां श्लोक, तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 17 में भगवान कहते हैं यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मा में ही रति वाला है, आत्मा में ही तुष्टि वाला है और आत्मा में ही संतुष्टि वाला है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। हाँ, चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने कहा है। कौन सा श्लोक है? अंतिम श्लोक, अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है क्या, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृतिस्थम ज्ञानासीन आत्मनः चित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। ये भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हाँ, तो अर्जुन जो है ना इसलिए भ्रमित हो रहे हैं कि कहीं पर तो भगवान ये कहते हैं कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते, है ना। तो अर्जुन सोचा फिर मुझे युद्ध करने की क्या जरूरत है। बड़ा अच्छा अर्जुन को जो है कारण मिल गया युद्ध न करने का। क्यों? क्योंकि तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि जो आत्म में ही रति वाला, आत्म में ही तृप्ति वाला, आत्म में ही संतुष्टि वाला है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अब चौथे अध्याय फिर भगवान ने कह दिया क्या, उत्तिष्ठ भारत है, खड़े हो है? तो अर्जुन क्या सोचते हैं कि देखो पहले तो मुझे बिठा दिया, युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, अब कहते खड़े हो युद्ध करो। तो इसलिए अर्जुन जो है भ्रमित है। और हाँ, सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, ये भी चौथे अध्याय में भगवान ने कहा, सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमापते, सब कर्म समाप्त होते कहाँ पर, ज्ञान में। तो अर्जुन को फिर एक और भी कारण मिल गया युद्ध ना करने का। भगवान ने कह दिया सब कर्म समाप्त होते हैं कहाँ पर, ज्ञान में, ज्ञान की प्राप्ति में। तो फिर अर्जुन सोचते हैं फिर युद्ध करने की क्या जरूरत है, मैं जो है ज्ञान में स्थित हो जाऊंगा तो युद्ध करने की क्या जरूरत है, है ना। लेकिन चौथे अध्याय के अंत में फिर भगवान ने कह दिया कि खड़े हो युद्ध करो। हाँ, तो इस तरह से अर्जुन जो है इन मिश्रित बातों से भ्रमित हो रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन ये समझना, ये अर्जुन ये समझते हैं कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग करना, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वे ये सोचते हैं कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उन्हें कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वे यह नहीं समझ पाए कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः वे पूछते हैं कि वे सब प्रकार से कर्म त्याग दें या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें। यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ, बहुत सुंदर तात्पर्य। प्रभुपाद जी ने सब बातें जो है बिल्कुल खोल करके स्पष्ट रूप से बताई हैं। अब इस श्लोक में आप देखते हैं कि अर्जुन ने भगवान को किस नाम से संबोधित किया है। कौन बताएगा, इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान का कौन सा नाम लिया है, कौन बताएगा है? अर्जुन ने यहाँ पर कृष्ण नाम का प्रयोग किया है। तो ये मेरा लेख है 27वां अध्याय प्रथम के श्लोक संख्या 28 पर जो मैंने लेख लिखा है, तो उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि उस श्लोक में भी अर्जुन ने कृष्ण नाम का प्रयोग किया है ना। श्रील प्रभुपाद बतलाते थे कि यदि ईश्वर का कोई मूल नाम है तो वह कृष्ण ही हो सकता है। क्या समझे प्रभुपाद, क्या बताते हैं, यदि ईश्वर का कोई मूल नाम अगर है तो कृष्ण ही हो सकता है। क्योंकि कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। कैसे कृष्ण शब्द कैसे बना है, कर्षति इति कृष्णः। क्या समझे, कर्षति इति कृष्णः, जो व्यक्ति सभी को आकर्षित करे वो कृष्ण है। हाँ, जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, क्या संदेह? जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी प्रकार कृष्ण क्या करते हैं? सभी जीवों को आकर्षित करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने जिस संकीर्तन आंदोलन को संपूर्ण विश्व में फैलाया, उसका नाम रखा क्या? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो कृष्ण नाम दिया प्रभुपाद ने, है ना? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। कुछ लोगों का सुझाव था क्या कि इस हरे कृष्ण आंदोलन को संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए ईश्वर का कोई विशेष नाम ना देकर इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय ईश भावनामृत संघ रखा जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस ना हो करके इसका नाम रखो क्या? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शसनेस। परंतु श्री प्रभुपाद ने इस बात पर ही जोर दिया कि इस संस्था का नाम अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ ही होना चाहिए। आप समझे? प्रभुपाद ने जोर दिया कि कृष्ण का नाम होना चाहिए इसमें, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस होना चाहिए। क्यों? श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, यहां तक कि वे अपने शत्रुओं को भी आकर्षित करते हैं। इस प्रकार की एक घटना का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। जिस समय श्री कृष्ण मथुरा में कंस की रंगशाला में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर विभिन्न प्रकार के लोगों ने श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के भावों में देखकर आकर्षण का अनुभव किया। किस समय? जब कृष्ण कंस की रंगशाला में प्रवेश करते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी 10 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन करते हैं जिन्होंने 10 प्रकार के विभिन्न रसों में श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण का अनुभव किया। अच्छा, तो 10 प्रकार के रस देखिए, 10 प्रकार के रस एक साथ प्रकट हुए। विभिन्न प्रकार के लोगों ने विभिन्न प्रकार के रसों में कृष्ण के प्रति आकर्षण का अनुभव किया। तो पहला है रौद्र रस। क्या समझे? पहला रस कौन सा? रौद्र रस। रौद्र मतलब मतलब क्रोध का भाव जिसमें है। कंस की रंगशाला के 5 मुख्य पहलवान थे। कौन? चाणूर, मुष्टिक, कोट, सल और तोसल। इन्हें कंस ने समझा दिया था क्या कि वे कृष्ण बलराम के साथ कुश्ती लड़ने का बहाना करके क्या करें? कपट पूर्वक उन दोनों भाइयों की हत्या कर दें। परंतु जिस समय ये दोनों भाई उनके समक्ष पहुंचे, तो इन पहलवानों को ये ऐसे दिखाई दिए मानो इनके शरीर वज्र के बने हुए हैं। कृष्ण बलराम, चूंकि ये पहलवान पत्थर जैसे शरीर वाले थे और इन्होंने सोचा था कि कृष्ण बलराम के फूल जैसे शरीर को ये आसानी से मसल डालेंगे, परंतु आश्चर्य, कृष्ण बलराम के शरीर कैसे हैं? वज्र के समान सुदृढ़ हैं। वज्र के सामने जब पत्थर टकराते हैं तो क्या होता है? वज्र की कोई हानि नहीं होती है, परंतु पत्थर चूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार इन पहलवानों ने श्री कृष्ण के प्रति रौद्र रस में आकर्षण का अनुभव किया। रौद्र रस है ये, मतलब बहुत खतरनाक, भगवान जो है बहुत खतरनाक दिखाई दे रहे हैं, रौद्र रस। दूसरा है अद्भुत रस। अद्भुत रस, अब किनको अद्भुत रस में भगवान दिखाई दिए? मथुरा के सामान्य निवासियों को श्री कृष्ण और बलराम अत्यंत विचित्र लग रहे थे। उनका रूप अत्यंत विचित्र था। मथुरा शहर में जब कृष्ण बलराम आए तो बड़े विचित्र लग रहे हैं। उनके शरीर का रंग भी अत्यंत विचित्र था। उन दोनों के चरित्र भी विचित्र थे। मथुरा के निवासी उनकी चाल ढाल को देखकर और उनके वस्त्रों को देखकर विस्मित हो रहे थे, क्योंकि इसके पूर्व उन्होंने ऐसे बालक अपने जीवन में कभी भी नहीं देखे थे। इस प्रकार मथुरावासियों ने श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत रसमय आकर्षण का अनुभव किया। अब तीसरा है क्या? श्रृंगार रस। श्रृंगार मथुरा की युवतियों ने, किसने? मथुरा की युवतियों ने श्री कृष्ण को साक्षात कामदेव के समान देखा। उनकी दृष्टि श्री कृष्ण के जिस अंग पर पड़ती थी वहां से उनकी दृष्टि हटती ही नहीं थी। इस प्रकार की युवतियां श्री कृष्ण के संपूर्ण सौंदर्य का दर्शन न करने कर पाने के कारण अत्यंत अतृप्त थीं। ये स्त्रियां गोपियों के सौभाग्य की सराहना करने लगीं कि जो श्री कृष्ण का वृंदावन में निरंतर दर्शन करती रहीं। इस प्रकार युवतियों ने श्री कृष्ण के प्रति श्रृंगार रस में आकर्षण का अनुभव किया। अब चौथा है हास्य रस। हास्य रस में अब कौन है कृष्ण का दर्शन करते हास्य रस में? श्री कृष्ण के बाल सखा श्री कृष्ण को अपना स्वजन मानकर इस बात पर हंस रहे थे कि मथुरावासी किस प्रकार श्री कृष्ण को देखकर विस्मित हो रहे हैं। श्री कृष्ण के सखागण अपने को श्री कृष्ण के ही समान समझते थे, अतः उन्हें इस बात पर हंसी आ रही थी कि श्री कृष्ण यद्यपि उन्हीं के समान अशिक्षित और गांव के निवासी हैं। कृष्ण के सखा क्या सोचते हैं? हमारे समान तो कृष्ण हैं, कैसे अशिक्षित? जैसे हम हैं वैसे कृष्ण भी हैं, हम भी गांव के गंवार हैं और कृष्ण भी हैं। परंतु यहाँ पर बड़े बड़े शिक्षित और नगर निवासी गण श्री कृष्ण से प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार सखाओं ने श्री कृष्ण के प्रति हास्य रस में आकर्षण का अनुभव किया। तो कृष्ण के सखाओं को हंसी आ रही है। अब पांचवा है क्या? वीर रस। वीर रस। कंस ने जिन सामंत राजाओं को इस उत्सव में बुलाया था वे कृष्ण बलराम को देख रहे थे कि ये कितनी निर्भीकता के साथ रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। देखो वीरता का दर्शन हो रहा है। निर्भीक हैं कृष्ण बलराम, कैसे हैं? निर्भीक हैं। यद्यपि कंस ने इनको मार डालने के लिए अत्यंत भयानक व्यवस्थाएं की थीं, परंतु ये दोनों बालक प्रत्येक संकट का निर्भीक होकर सामना करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार राजाओं ने श्री कृष्ण के प्रति वीर रस में आकर्षण का अनुभव किया। अब छठवां है करुण रस। अब किसने करुण रस में कृष्ण का दर्शन किया? वहां पर श्री कृष्ण के माता पिता के समान अनेक स्त्री पुरुष थे जिन्होंने कंस की रंगशाला में श्री कृष्ण बलराम को अत्यंत भयंकर संकटों से घिरा हुआ देखा। वे सोच रहे थे कि ये दोनों बालक अत्यंत कोमल व्यवहार के योग्य हैं। यहाँ पर इन बालकों के साथ अत्यंत कठोर व्यवहार किया जा रहा है। इस प्रकार वरिष्ठ स्त्री पुरुषों ने श्री कृष्ण के प्रति करुण रस में आकर्षण का अनुभव किया। अब सातवां है भयानक रस। अब किसने भयानक रस में कृष्ण का दर्शन किया? वहां पर कंस ने। कंस ने क्या देखा? कंस ने श्री कृष्ण को साक्षात अपनी मृत्यु के रूप में देखा। क्या समझे? साक्षात मृत्यु आ गई मेरी कृष्ण के रूप में। जीवन भर निर्दोष प्राणियों के प्रति वो जितना भयानक व्यवहार करता रहा उतने ही भयानक श्री कृष्ण से दिखाई दे रहे थे। जितना देख भयभीत माता देव की कंस के व्यवहार से थी उतने ही देख कंस भी श्री कृष्ण से भयभीत हो रहा था। इस प्रकार कंस ने श्री कृष्ण के प्रति भयानक रस में आकर्षण का अनुभव किया। अब आठवां क्या? बीभत्स रस। बीभत्स का मतलब खराब जैसे मालूम पड़ते ना, नफरत जैसे होती है ना, बीभत्स। वहां पर कुछ ऐसे भी मूर्ख थे जो श्री कृष्ण को मथुरा में उत्पात करने वाला समझते थे। कहाँ से आ गए ये बदमाश लड़के, ये सोचते हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस का सम्मान नहीं किया। राजा साहब बैठे हैं और अपने अकड़े हुए घुस गए, कंस का सम्मान नहीं किया, राजा का सम्मान नहीं किया, इस कारण से वे उद्विग्न हो रहे थे कि बड़े खराब बच्चे हैं ये। श्री कृष्ण ने कुबलिया पीठ नामक हाथी को मार दिया था तथा यज्ञ में जिस धनुष की पूजा होनी थी उस धनुष को भी तोड़ दिया था, इस कारण से वे श्री कृष्ण को अशिष्ट समझ रहे थे। बड़े अशिष्ट हैं ये लड़के, असभ्य हैं। और इससे भी अधिक अशिष्टता का अनुभव उन्होंने उस समय किया जिस समय श्री कृष्ण हाथी के खून से सने हुए दांत को अपने कंधे में रखकर सभा के अंदर आए। कितने असभ्य हैं, गंदे हैं, क्या खून से भरे दांत को कंधे में रख करके घुस आए सभा के अंदर। इस प्रकार मूर्खों ने श्री कृष्ण के प्रति विभत्त रस में आकर्षण का अनुभव किया। अब नवा है शांत रस। शांत रस में किसने दर्शन किया कृष्ण का? वहां पर कुछ ऐसे भी योगी थे जो इस संसार के बंधन तथा दुखों से छूटना चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण को